एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम मैनेजमेंट, हाँ, प्रबंधन की दुनिया में एक, कह सकते हैं, गहरी डुबकी लगाने वाले हैं, और हमारा नजरिया थोड़ा अलग होगा क्योंकि हम इसे जॉन हेनरी के चश्मे से देखेंगे। हम उनके दो अहम कामों, मैनेजमेंट रीइमेजिन्ड और मैनेजमेंट अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन से जो विचार निकले हैं, उन पर बात करेंगे।
हाँ, और ये विषय आज बहुत बहुत ही प्रासंगिक है। देखिए, हम अक्सर मैनेजमेंट को बस कंपनियों को चलाने, प्रॉफिट बनाने का एक टूल समझ लेते हैं, पर क्या ये बस इतना ही है? खासकर आज के दौर में जहाँ काम करने के तरीके इतनी तेजी से बदल रहे हैं। आप देखिए, रिमोट वर्क है, गिग इकोनॉमी है, एआई आ रहा है।
बिल्कुल।
तो ऐसे में ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि मैनेजमेंट का असली रोल क्या है, उसका मकसद क्या होना चाहिए। हेनरी हमें इन्हीं बुनियादी सवालों पर सोचने पर मजबूर करते हैं।
सही कहा। ये सिर्फ कुछ तकनीकें या प्रोसेस नहीं है, ये तो इंसानी रिश्तों, हमारे मूल्यों और समाज से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हेनरी के हिसाब से मैनेजमेंट को सिर्फ कैसे करें की बजाय क्यों करें और किसके लिए करें, इस नजरिए से कैसे देखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल।
तो सबसे पहले, ये जॉन हेनरी हैं कौन? क्योंकि जैसा आपने कहा, वो कोई टिपिकल मैनेजमेंट गुरु टाइप नहीं है जो आपको बस सफलता के नुस्खे बताएंगे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी अपनी अकेडमिक यात्रा ही देखिए ना, कितनी अलग है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हेनरी बिजनेस स्कूल, इन जगहों पर प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन शुरुआत हुई इतिहास और विज्ञान के दर्शन, मतलब फिलॉसफी ऑफ साइंस से, और उसके बाद वो बिजनेस स्टडीज में आए।
हाँ, और ये जो मिश्रण है ना, इतिहास, दर्शन, फिर बिजनेस, ये उन्हें मैनेजमेंट को सिर्फ एक संकरे बिजनेस लेंस से नहीं, बल्कि एक ज्यादा व्यापक, आलोचनात्मक और ऐतिहासिक नजरिए से देखने की क्षमता देता है।
और सिर्फ किताबी बातें नहीं है, उनका असल दुनिया की कंपनियों, संगठनों के साथ काम करने का भी बहुत लंबा अनुभव है।
बिल्कुल, वो थ्योरी और प्रैक्टिस, सिद्धांत और व्यवहार के बीच का जो गैप है ना, उसे पाटने की कोशिश करते हैं। उनकी खासियत यही है कि वो मैनेजमेंट की उन आम धारणाओं पर सवाल उठाते हैं जिन्हें हम अक्सर सच मान लेते हैं। जैसे, क्या मैनेजमेंट वाकई एक न्यूट्रल साइंटिफिक चीज है, या ये भी एक विचारधारा है जिसके अपने मूल्य, अपने पूर्वाग्रह होते हैं?
सही बात है। वो किसी एक मैनेजमेंट थ्योरी के पैरोकार नहीं लगते, पुरानी क्लासिकल थ्योरी हो या बाद में आई ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट या फिर आज के विचार, वो इन सब को साथ रखकर देखते हैं, उनकी ताकत, उनकी कमजोरियां सब परखते हैं।
हाँ, इससे हमें मैनेजमेंट की एक ज्यादा संतुलित और आप कह सकते हैं गहरी तस्वीर मिलती है। उनका फोकस सिर्फ एफिशिएंसी, मतलब कुशलता पर ही नहीं है, बल्कि नैतिकता और मानवीय पहलू, इन पर भी उतना ही जोर है।
अच्छा, तो अगर हम हेनरी के काम के सार, मतलब एसेंस पर आएं, तो उनका सबसे बड़ा तर्क क्या है?
देखिए, मेरे ख्याल से उनका सबसे बुनियादी तर्क यह है कि मैनेजमेंट कोई सिर्फ तकनीकी या एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है।
जी,
ये मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है।
सामाजिक प्रक्रिया, इसका मतलब?
इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट सिर्फ अंदरूनी चीजों को नहीं देखता, ये लोगों के आपसी रिश्तों को, संगठन की अपनी संस्कृति को, और यहाँ तक कि समाज पर जो उसका असर पड़ रहा है,
जी,
उन सबको आकार देता है।
जी,
और उनसे आकार लेता भी है। ये एक दो तरफा रिश्ता है।
अच्छा, हाँ।
और इसी से जुड़ा उनका शायद दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट कोई टाइमलेस यूनिवर्सल चीज नहीं है, जैसे विज्ञान के नियम होते हैं ना, हर जगह हर समय एक जैसे।
बिल्कुल।
हेनरी मानते हैं कि आज हम जैसे मैनेजमेंट कहते हैं, उसका जन्म औद्योगिक क्रांति की खास जरूरतों और चुनौतियों से हुआ था।
मतलब जब वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी।
हाँ, सोचिए ना, फैक्ट्रियों में हजारों मजदूर, उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, उनसे लगातार काम कैसे लिया जाए, ये समस्या थी। और यहीं से मैनेजमेंट की शुरुआत हुई, और तब से लेकर आज तक ये लगातार बदलता रहा है। उस समय के सामाजिक मूल्य क्या थे, टेक्नोलॉजी कैसी थी, शक्ति किसके हाथ में थी, इन सब चीजों ने इसे प्रभावित किया है।
तो यह हमेशा से विकसित होता आया है।
बिल्कुल। और वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि मैनेजमेंट हमेशा एक तरह के तनाव से जूझता रहता है। एक तरफ है संगठन के आर्थिक लक्ष्य, ज्यादा कुशलता, कम लागत, मुनाफा,
हाँ, जो आमतौर पर सबसे ऊपर रखे जाते हैं।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ है उसमें काम करने वाले इंसान, उनकी अपनी जरूरतें हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं, उन्हें सम्मान चाहिए, पहचान चाहिए, थोड़ी आजादी चाहिए, अपने काम में कोई मतलब दिखना चाहिए।
अच्छा,
हेनरी कहते हैं कि मैनेजमेंट का असली काम, या कहें कि चुनौती, इन्हीं दो सिरों के बीच संतुलन साधना है, और ये आसान बिल्कुल नहीं है। अक्सर क्या होता है कि एक पहलू, खासकर आर्थिक वाला, दूसरे पर हावी हो जाता है।
हाँ, ये तो हम देखते भी हैं। उनका काम इसलिए भी मुझे खास लगता है क्योंकि ये सिर्फ मैनेजर्स के लिए नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उन कर्मचारियों के लिए भी जो रोज मैनेजमेंट के फैसलों का असर झेलते हैं, और उन सबके लिए जो ये समझना चाहते हैं कि हमारे संगठन, हमारा समाज, ये सब चलते कैसे।
ये हमें मैनेजमेंट को सिर्फ एक कैसे करें वाली टूल किट की तरह नहीं देखने देता, बल्कि एक ज्यादा जटिल, नैतिक और हाँ, मानवीय गतिविधि के रूप में दिखाता है। चलिए अब हेनरी के कुछ मुख्य विचारों को थोड़ा और खोलते हैं। वो मैनेजमेंट की प्रकृति, मतलब नेचर से शुरू करते हैं। सवाल उठाते हैं, क्या ये विज्ञान है या कला है?
और उनका जवाब क्या है?
इनका जो असली बुनियादी काम है वो है सामाजिक समन्वय,
सोशल कोऑर्डिनेशन।
ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ?
आसान शब्दों में मतलब है ऐसी स्थितियां बनाना, ऐसा माहौल बनाना जहां लोग अपनी अलग अलग जरूरतों, अलग अलग विचारों के बावजूद मिलजुल कर किसी एक साझा लक्ष्य के लिए असरदार ढंग से काम कर सकें।
अच्छा।
और सिर्फ काम ही ना करें, बल्कि ऐसा करते हुए उनकी गरिमा, उनकी डिग्निटी भी बनी रहे और उन्हें अपनी क्षमताएं, अपने स्किल्स विकसित करने का मौका भी मिले। तो मकसद सिर्फ काम निकलवाना नहीं है, बल्कि सही माहौल बनाना है जहां लोग साथ मिलकर काम करना चाहें और कर पाएं। अच्छा, तो ये सिर्फ ऑर्डर देने या कंट्रोल करने से कई ज्यादा गहरी बात हुई। और आपने पहले जिक्र किया था कि मैनेजमेंट ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है। हेनरी इतिहास को कैसे देखते हैं, इसमें क्या खास है?
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि आज भी मैनेजमेंट की सोच में कंट्रोल का तत्व इतना हावी क्यों रहता है। हेनरी बताते हैं कि फॉर्मल मैनेजमेंट की शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति के साथ।
वो फैक्ट्रियों वाला दौर?
हाँ, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुली तो मालिकों के सामने ये चुनौती थी कि गांव से आए मजदूर, जिन्हें वो अनुशासन का आदि नहीं मानते थे, उनसे लगातार एक जैसा काम कैसे लिया जाए। यहीं से मैनेजमेंट का पहला रूप सामने आया और उसका मुख्य फोकस था नियंत्रण और अनुशासन।
और फिर शायद इसी कड़ी में वो फ्रेडरिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट आया होगा, जिसके बारे में हम सबने थोड़ा बहुत सुना है। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, हर मूवमेंट का टाइम नोट करना।
बिल्कुल वही। टेलर एक इंजीनियर थे, उनका मानना था कि हर काम को करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है जिसे वैज्ञानिक तरीके से ढूंढा जा सकता है, टाइम मोशन स्टडीज के जरिए। इससे उत्पादकता तो जबरदस्त बढ़ी। हेनरी फोर्ड की जो असेंबली लाइन थी वो इसी सोच का नतीजा थी, लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी।
क्या कीमत?
इंसान को मशीन का एक पुर्जा मान लिया गया। उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसकी अपनी पहल करने की क्षमता, उसकी क्रिएटिविटी, इन सबको नजरअंदाज कर दिया गया। ये मैनेजमेंट का पहला बड़ा मॉडल था, पूरी तरह कुशलता और नियंत्रण पर आधारित। मानवीय पहलू इसमें लगभग गायब ही था।
लेकिन इंसान मशीन तो है नहीं, तो जाहिर है इसका कुछ रिएक्शन भी हुआ होगा। लोग कब तक इसे झेलते?
हाँ, बिल्कुल हुआ। और वही थी ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। इसकी शुरुआत हुई उन मशहूर हॉथॉर्न स्टडीज से जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में की गई थी।
अच्छा, हॉथॉर्न स्टडीज। हाँ, सुना इनके बारे में।
बदलने जैसी भौतिक चीजें ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों का आपसी बर्ताव कैसा है, उनका मनोबल कैसा है, और सबसे जरूरी, उन्हें ये महसूस हो रहा है या नहीं कि मैनेजमेंट उन पर ध्यान दे रहा है, इन चीजों का उत्पादकता पर कहीं ज्यादा असर पड़ता है।
ओह, ये तो काफी चौंकाने वाली बात रही होगी उस समय।
बहुत। संदेश साफ था, कर्मचारी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वे सामाजिक प्राणी हैं, उन्हें पहचान चाहिए, सम्मान चाहिए, अपनेपन का एहसास चाहिए।
ये तो मैनेजमेंट की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लगता है, नियंत्रण से हटकर लोगों पर ध्यान देना। लेकिन क्या हेनरी इसे पूरी तरह सकारात्मक मानते हैं, या यहाँ भी उनका कोई आलोचनात्मक पक्ष है?
यहीं पर हेनरी की खासियत दिखती है। वो मानते हैं कि ये एक जरूरी और अच्छा बदलाव था, मानवीय पहलू का आना जरूरी था, लेकिन वो सवाल भी उठाते हैं। वो पूछते हैं, क्या ये वाकई कर्मचारियों की भलाई के लिए था, या ये नियंत्रण का ही एक ज्यादा परिष्कृत, ज्यादा चालाक तरीका था?
मतलब
चालाक तरीका कैसे?
मतलब ये कि कर्मचारियों को खुश महसूस कराओ, उन्हें लगे कि उनकी सुनी जा रही है, ताकि वो ज्यादा मेहनत से काम करें और शायद यूनियनों वगैरह से भी दूर रहें।
हेनरी दिखाते हैं कि मैनेजमेंट हमेशा इन दो ध्रुवों, काम और लोगों के बीच झूलता रहा है। कभी काम पर ज्यादा जोर, तो कभी लोगों पर। संतुलन साधना हमेशा मुश्किल रहा है।
ये बहुत दिलचस्प है। तो टेलर का फोकस काम पर, ह्यूमन रिलेशंस का लोगों पर, हेनरी इन दोनों से आगे बढ़कर क्या कहते हैं? जैसे अधिकार और शक्ति के बारे में, एक मैनेजर को दूसरों को निर्देश देने का अधिकार कहां से मिलता है, क्या सिर्फ पद पर होने से?
हेनरी कहते हैं कि सिर्फ पद पर होने से जो अधिकार मिलता है, जिसे फॉर्मल अथॉरिटी कहते हैं, वो काफी नहीं है। असली प्रभाव, असली इन्फ्लुएंस और जिसे लोग स्वीकार करें, वो अधिकार लेजिटिमेट अथॉरिटी तब बनता है जब लोग मैनेजर की काबिलियत, उसकी निष्पक्षता, उसके चरित्र पर भरोसा करते हैं।
भरोसे पर?
हाँ, शक्ति लोगों पर चलाने की चीज नहीं है, पावर ओवर पीपल, बल्कि लोगों के साथ मिलकर शक्ति बनाने की चीज है, पावर विथ पीपल, ताकि सब मिलकर कुछ ऐसा हासिल कर सकें जो अकेले नहीं किया जा सकता।
ये बहुत अहम बात है। अच्छा, और मैनेजमेंट के जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जैसे प्लानिंग करना, फैसले लेना, टीमों को ऑर्गेनाइज करना, इन पर हेनरी के क्या नजरिया है? क्या वो परंपरागत तरीकों को ही मानते हैं?
नहीं, वो यहाँ भी पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं। जैसे प्लानिंग की बात करें तो वो कहते हैं कि सिर्फ लॉजिकल रैशनल मॉडल बना लेना काफी नहीं है। असल दुनिया में जब फैसले लिए जाते हैं तो उसमें हमारी भावनाएं, हमारे पूर्वाग्रह, यहाँ तक कि ऑफिस की पॉलिटिक्स, इन सब का भी बड़ा रोल होता है। इन्हें अनदेखा नहीं कर सकते।
हाँ, ये तो होता है।
इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग में सिर्फ ये तय कर देना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब फॉर्मल स्ट्रक्चर बना देना ही काफी नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरी है अनौपचारिक नेटवर्क्स को समझना।
अनौपचारिक नेटवर्क मतलब?
मतलब असेंबली लोग किससे बात करते हैं,
जानकारी किसके जरिए कैसे पहुंचती है,
काम असल में होता कैसे है। अक्सर ये फॉर्मल चार्ट से बहुत अलग होता है, इसे समझना जरूरी है।
बिल्कुल।
और लीडरशिप और मोटिवेशन के बारे में, क्या मैनेजर और लीडर एक ही है? लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाए? हेनरी इनमें फर्क करते हैं, पर कहते हैं कि एक अच्छे मैनेजर में दोनों गुण होने चाहिए। लीडरशिप का ज्यादा ताल्लुक विजन देने, लोगों को प्रेरित करने, बदलाव लाने से है, जबकि मैनेजमेंट का ज्यादा ताल्लुक व्यवस्था बनाए रखने, चीजों को ठीक से चलाने और लक्ष्यों को हासिल करने से है।
और मोटिवेशन?
मोटिवेशन पर वो कहते हैं कि ये सिर्फ बाहरी इनामों से नहीं आता, जैसे पैसा या प्रमोशन। हाँ, वो जरूरी है, पर काफी नहीं। असली और टिकाऊ प्रेरणा तब मिलती है जब काम खुद में सार्थक लगे, जब लोगों को अपने काम में थोड़ी ऑटोनोमी मिले और उन्हें ये महसूस हो कि उनके काम का कोई मतलब है, वो कुछ अहम कर रहे हैं।
यानी काम को मीनिंगफुल बनाना।
और संवाद, कम्युनिकेशन, उसका क्या रोल है? ओ, वो तो शायद सबसे ही जरूरी स्किल मानते हैं हेनरी। चाहे आपको अपना विजन टीम को बताना हो, किसी को फीडबैक देना हो, अच्छा या बुरा, टीम में कोई मतभेद हो गया है उसे सुलझाना हो, या सबसे बढ़कर आपस में विश्वास का माहौल बनाना हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रभावी कम्युनिकेशन पर ही टिका है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता।
हाँ, ये तो है। आजकल बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है हर जगह। चेंज मैनेजमेंट पर हेनरी क्या कहते हैं? उसे कैसे हैंडल किया जाए?
वो मानते हैं कि चेंज मैनेजमेंट सिर्फ कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम नहीं है कि बस प्लान बनाओ और लागू कर दो। इसमें इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ चाहिए, संगठन के अंदर की राजनीति, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स की समझ चाहिए। सबसे जरूरी है लोगों को बदलाव की प्रक्रिया में शुरू से शामिल करना, उनकी चिंताएं सुनना, उनके सवालों का जवाब देना, उन्हें बदलाव का हिस्सा महसूस कराना। सिर्फ ऊपर से फरमान जारी कर देने से काम नहीं बनता, बल्कि विरोध होता है।
सही बात है, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। और आखिर में नैतिकता, एथिक्स और सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आजकल ये शब्द बहुत सुनने को मिलते हैं। हेनरी इन्हें मैनेजमेंट में कहाँ रखते हैं?
ये हेनरी के विचारों का बिल्कुल केंद्र है। वो नैतिकता को मैनेजमेंट पर कोई बाहरी बोझ या सिर्फ इमेज चमकाने का तरीका नहीं मानते।
अच्छा, तो फिर क्या मानते हैं?
उनका तर्क है कि लंबे समय में वही संगठन सफल होते हैं और टिकते हैं जो अपने सभी हितधारकों, स्टेक होल्डर्स के साथ विश्वास का रिश्ता बनाते हैं।
हितधारक मतलब सिर्फ शेयर होल्डर नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हितधारकों में कर्मचारी भी आते हैं, ग्राहक भी, सप्लायर भी, समाज भी, पर्यावरण भी। इन सब के साथ विश्वास बनाना जरूरी है, और ये विश्वास बिना नैतिक व्यवहार के बन ही नहीं सकता। तो नैतिकता सिर्फ सही काम करना नहीं है, बल्कि ये बिजनेस को टिकाऊ बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए एकदम जरूरी है।
तो ये तो एक बहुत ही अलग नजरिया हुआ नैतिकता को देखने का। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें जो हेनरी कहते हैं, तो उनके मैनेजमेंट के मॉडल से क्या मुख्य संदेश, क्या की टेकअवेज निकलते हैं?
पहला और सबसे बुनियादी संदेश तो शायद यही है कि मैनेजमेंट का असली रोल सामाजिक समन्वय है, लोगों को साथ लाकर प्रभावी ढंग से काम करने लायक माहौल बनाना। और ये कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई है और लगातार बदल रही है।
बिल्कुल। दूसरा कि प्रभावी मैनेजमेंट के लिए तकनीकी कुशलता और मानवीय समझ, इन दोनों का संतुलन साधना बेहद जरूरी है और ये आसान नहीं है। इसमें हमेशा एक तनाव रहता है कुशलता बढ़ाने के दबाव और इंसानों का ध्यान रखने की जरूरत के बीच।
हाँ,
अच्छे मैनेजर इस तनाव को समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। भारत में हम अक्सर ये देखते हैं ना, कई बार वर्कप्लेस पर टारगेट्स का दबाव इतना होता है कि मानवीय पहलू कहीं पीछे छूट जाता है, जिसका असर फिर कर्मचारियों के मनोबल पर और लंबी अवधि में कंपनी के प्रदर्शन पर भी पड़ता है।
बिल्कुल सही कहा। तीसरा अहम संदेश ये है कि नीति शास्त्र मैनेजमेंट का एक अंदरूनी हिस्सा है, कोई बाहरी या वैकल्पिक चीज नहीं। बल्कि हेनरी तो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं, वो कहते हैं कि मैनेजमेंट खुद एक विचारधारा है।
विचारधारा? मैनेजमेंट कैसे?
मतलब ये कि मैनेजमेंट सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बताता, बल्कि ये सोचने का एक तरीका भी है। ये कुछ मान्यताओं को बढ़ावा देता है, जैसे शायद ये कि मुनाफा सबसे ऊपर है, और ये समाज में शक्ति के जो मौजूदा समीकरण है उन्हें कहीं ना कहीं सही ठहराता है। जैसे आजकल बहुत चलता है शेयर होल्डर वैल्यू सबसे जरूरी है। हेनरी कहते हैं ये कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, ये एक चुना हुआ नजरिया है, एक विचारधारा है।
ओ, ये तो सोचने वाली बात है। चौथा संदेश शायद ये है कि एक साइज सब पर फिट नहीं होता। मैनेजमेंट हमेशा संदर्भ पर निर्भर करता है। जो तरीका एक कंपनी में या एक देश में काम करता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरी जगह भी उतना ही कारगर हो।
हाँ,
और वो मैनेजमेंट के एक प्रोफेशन होने पर भी सवाल उठाते हैं। जैसे डॉक्टर की पहली जिम्मेदारी मरीज के प्रति होती है ना, या वकील की अपने क्लाइंट के प्रति। क्या मैनेजर की पहली जिम्मेदारी कंपनी के मालिक या शेयर होल्डर के प्रति होती है, या फिर कर्मचारियों और समाज के प्रति? ये एक मुश्किल नैतिक सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।
और पांचवा शायद ये कि मैनेजमेंट कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार सीखते रहने और बदलते माहौल के साथ ढलते रहने की प्रक्रिया है। इसमें अलग अलग हितधारकों के हितों में संतुलन साधना होता है, और सबसे अहम, लोगों को उनके काम में अर्थ और उद्देश्य, पर्पस एंड मीनिंग, खोजने में मदद करनी होती है। हेनरी का तर्क है कि ये सिर्फ ज्यादा मानवीय होना नहीं है, बल्कि प्रदर्शन के लिहाज से भी ये ज्यादा असरदार तरीका है।
हेनरी की किताबों में कुछ ऐसी पंक्तियां, कुछ ऐसे विचार हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जो आसानी से दिमाग से निकलते नहीं।
हाँ, है बिल्कुल। जैसे मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, इस पर उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रबंधन मूल रूप से ऐसी स्थितियां बनाने के बारे में है जहां मनुष्य अपने प्रयासों को प्रभावी ढंग से समन्वित कर सकें, साथ ही अपने गरिमा बनाए रखें और अपनी क्षमताओं का विकास करें।
वाह, ये तो मैनेजमेंट के लक्ष्य को ही बदल देता है। सिर्फ आउटपुट या प्रॉफिट नहीं, बल्कि इंसान की गरिमा और उसका विकास भी उतना ही जरूरी है।
बिल्कुल। और आज की टेक्नोलॉजी वाले युग में ये बात कितनी सच लगती है। दुनिया की सबसे परिष्कृत प्लानिंग सिस्टम भी उस विश्वास और संचार का स्थान नहीं ले सकती जो मानवीय सहयोग को संभव बनाते हैं।
हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब आप कितने भी बढ़िया सॉफ्टवेयर ले आए, कितने भी प्रोसेस बना लें, अंत में तो बात इंसानी भरोसे और आपस की बातचीत पर ही आकर टिकती है। उसके बिना टीम काम नहीं कर सकती।
नैतिकता पर उनका ये नजरिया भी कितना शक्तिशाली है, खासकर तब जब बिजनेस में अक्सर नैतिकता को मुनाफे में रुकावट की तरह देखा जाता है। वो कहते हैं प्रबंधन में नैतिकता व्यावसायिक सफलता को बाधित करने के बारे में नहीं है, ये परिभाषित करने के बारे में है कि व्यावसायिक सफलता का वास्तव में अर्थ क्या है।
क्या बात है। मतलब नैतिकता ये तय करती है कि असली सफलता है क्या। क्या वो सिर्फ पैसों में नापी जा सकती है, या उसके और भी मायने हैं, जैसे कर्मचारियों की खुशी, समाज पर अच्छा असर।
सही।
और ये विचार कि हर फैसला असल में कई परतें लिए होता है।
प्रत्येक प्रबंधन निर्णय एक साथ एक तकनीकी निर्णय, एक मानवीय निर्णय और एक नैतिक निर्णय होता है। प्रभावी प्रबंधक तीनों आयामों को देखना और संबोधित करना सीखते हैं।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि चीजों को सिर्फ एक पहलू से नहीं देखना चाहिए। हर फैसले का असर कई स्तरों पर होता है, उसे समग्रता में, होलिस्टिकली देखना जरूरी है।
और आखिर में शक्ति पर ये नजरिया, ये तो पारंपरिक सोच को बिल्कुल उलट देता है। प्रबंधन लोगों पर शक्ति रखने, पावर ओवर पीपल के बारे में नहीं है, ये लोगों के साथ शक्ति बनाने, पावर विद पीपल के बारे में है, ताकि वे चीजें हासिल की जा सकें जो कोई भी अकेले पूरा नहीं कर सकता।
बिल्कुल। ये नियंत्रण की बजाय सहयोग पर, एम्पावरमेंट पर जोर देता है, साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की बात करता है।
तो अब असली सवाल, इन सब गहरे विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे काम की जगह पर क्या इस्तेमाल है, इन्हें हम अमल में कैसे ला सकते हैं?
देखिए, अगर कोई मैनेजर या टीम लीडर की भूमिका में है तो वो सबसे पहले तो यही कर सकता है कि अपने हर बड़े फैसले में सचेत रूप से इन तीनों पहलुओं, तकनीकी, मानवीय और नैतिक को तोलने की कोशिश करे।
जैसे
कोई उदाहरण, मान लीजिए टीम के लिए नए लक्ष्य तय करने हैं तो सिर्फ ये ना देखें कि क्या हासिल करना है, ये तकनीकी पहलू हुआ, बल्कि ये भी सोचें कि इन लक्ष्यों का टीम के सदस्यों पर क्या असर पड़ेगा, क्या उनके पास इसे पूरा करने के साधन हैं, क्या इससे उन पर बहुत ज्यादा दबाव तो नहीं पड़ेगा, ये मानवीय पहलू हुआ, और क्या ये लक्ष्य कंपनी के घोषित मूल्यों के अनुरूप हैं, क्या ये सही तरीके से हासिल किए जा सकते हैं, ये नैतिक पहलू हुआ।
हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, और वो लोगों पर शक्ति की बजाय लोगों के साथ शक्ति बनाने वाली बात, उसे कैसे अमल में लाया जा सकता है?
उसका मतलब है अपनी टीम की बात सुनना, सच में सुनना, उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करना जहां तक संभव हो, उन्हें जरूरी जानकारी देना, रिसोर्स देना, और सबसे जरूरी एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग बिना डरे अपनी राय रख सकें, सवाल पूछ सकें, यहां तक कि असहमति भी जता सकें। विश्वास ऐसे ही बनता है धीरे धीरे।
और जो लोग मैनेजमेंट की भूमिका में नहीं है, मतलब जो कर्मचारी हैं, उनके लिए इन विचारों का क्या मतलब है?
उनके लिए भी ये बहुत काम के हैं। पहला तो ये कि वे अपने काम की जगह को, वहां होने वाले फैसलों को बेहतर समझ सकते हैं। मैनेजमेंट के फैसलों के पीछे की सोच क्या है, किन मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, ये देख सकते हैं। और जब कभी कंपनी का हित या शेयर होल्डर वैल्यू जैसी बातें कही जाएं, तो वे आलोचनात्मक ढंग से सोच सकते हैं कि क्या इसमें कर्मचारियों का हित, समाज का हित भी शामिल है, या ये सिर्फ एक खास नजरिए को दिखाता है।
हाँ, और ये हमें मैनेजमेंट की जो भाषा होती है, जो नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, आजकल देखिए एजाइल बहुत चलता है, ग्रोथ हैकिंग है।
हाँ, बिल्कुल।
तो इन ट्रेंड्स को आंख बंद करके स्वीकार करने की बजाय हम सवाल उठा सकते हैं, क्या ये वाकई काम करने का बेहतर तरीका है, या ये सिर्फ दबाव बढ़ाने या नियंत्रण का कोई नया फैंसी नाम है? ये हमें ज्यादा जागरूक बनाता है।
बिल्कुल। और सबसे बुनियादी बात शायद ये है कि ये सारे विचार हमें संवाद, विश्वास और आपसी सम्मान की अहमियत सिखाते हैं, चाहे हम मैनेजर हों, कर्मचारी हों या कुछ और। ये सिद्धांत हमें बेहतर कामकाजी रिश्ते बनाने में और शायद एक ज्यादा मानवीय वर्कप्लेस बनाने में मदद कर सकते हैं।
मेरे लिए तो हेनरी के काम से सबसे बड़ी सीख यही है कि मैनेजमेंट कोई ऐसी पहेली नहीं है जिसका एक सीधा आसान सा जवाब हो। ये जटिलताओं को समझने, उन्हें स्वीकार करने और उनमें संतुलन साधने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है। तकनीकी, मानवीय और नैतिक पहलू, ये सब आपस में इतने गुंथे हुए हैं कि इन्हें अलग करके देखा ही नहीं जा सकता।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि असली प्रबंधकीय अधिकार, असली लीडरशिप, वो पद से नहीं आती, वो आपकी योग्यता, आपकी ईमानदारी, आपके चरित्र से आती है। और दूसरी बात कि नैतिकता कोई बोझ नहीं है या कोई सजावटी चीज नहीं है, बल्कि ये सही मायनों में सफलता को परिभाषित करने और उसे टिकाऊ बनाने का जरिया है। हेनरी का मैनेजमेंट का इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि नियंत्रण की तरफ झुकने की प्रवृत्ति बहुत स्वाभाविक है, इसलिए हमें लगातार सचेत रहकर मानवीय गरिमा को प्राथमिकता देनी होगी। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ अच्छा होना नहीं है, ये असल में ज्यादा प्रभावी होना भी है।
बिल्कुल, जॉन हेनरी हमें मैनेजमेंट को ज्यादा गहराई से, ज्यादा आलोचनात्मक नजर से और हाँ, ज्यादा मानवीय तरीके से देखने का एक बहुत जरूरी नजरिया देते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।